का था, रूप वही, रूप नया।
गाथा में आप सुन रहे हैं सुदर्शन प्रियदर्शनी की लिखी कहानी अखबार वाला। जया ने ज्यों ही सुबह उठकर खिड़की पर छितरी ब्लाइंड्स का कान मरोड़ा, उजाला धकियाता हुआ अंदर घुस आया। इस उजाले के साथ साथ हर सुबह एक सन्नाटा भी कमरे के कोने में दुबका पड़ा, उठ खड़ा होता था। इतने वर्षों के बाद आज भी दूर अपनी खिड़की से झांकता बरगद का पेड़, चिड़ियों की चहचहाट, रंभाती गायें, पड़ोसी के चूल्हे से उठता उपलों का गंधित धुआं, मिट्टी की कुल्ली में उबलती चाय का पानी और मन के किसी कोने में सुबह की धूप से उभर आते और सारी सुबह पर जैसे अबूर छिड़क देते। अन्यथा इस सड़क पर न कोई आहट, न ट्रैफिक की धुमाधम, न चिल्लपों, न स्कूल जाने वाली बच्चों की मीठी भोली चिटकोटियां उसकी हर सुबह एक अधूरेपन के ग्रहण से ग्रसित हो जाती। ब्लाइंड्स खोलने के बाद वो चाय का पानी चढ़ाती और फिर किवाड़ खोलकर बाहर से अखबार उठाती। आज किवाड़ खोलते ही उसकी अलसाई अध खुली सी नींद काफूर हो गई। वो कुछ क्षणों के लिए जैसे प्रस्तर मूर्ति बन गई। सामने वाले घर के बाहर प्यूरेनल वैन खड़ी थी। उठने से पहले वो बहुत देर तक करवटें बदलती और अपने रोज के सन्नाटों से रोज की तरह समझौता करती रही थी। किसी आहट या किसी सिसकी ने उसकी खिड़की पर कोई दस्तक नहीं दी थी। यूं तो वो उन बंद कमरों वाली जिंदगी की आदि हो गई है। दूर दूर तक फैला सन्नाटा उसे सालता रहता है, पर एक चुप सा समझौता भी उसने कर लिया है। आस पड़ोसियों से ग्राहक और दुकानदार जैसा रिश्ता उसे काटता ही है, लेकिन आदत बनती जा रही। हेलो हाय स्टिक नोट की तरह एक तरफ से उधड़ी, दूसरी तरफ से चिपकी सी मुस्कान व्यक्ति के अस्तित्व को समाप्त कर देती और अपने आप पर केंद्रित ये समाज कितना बेलाग और बेगाना है। इस घर में आए अभी 2 ही साल हुए हैं, किसी के साथ हेलो हाय से अधिक नाता नहीं बना, किंतु पिछले घर में तो वो लगभग 10 साल तक रही थी। घर भी बच्चों से भरा भरा था, फिर भी पड़ोसियों से पहचान दूर से फेंके गुल्ली डंडे से ही सीमित रही थी। यहाँ आकर भी अपनी ओर से वो जानने की कोशिश करती रही कि आसपास कौन रहता है, कैसा है, उनके निकट भी जाने का प्रयत्न करती रहती। चाहे यहाँ की सभ्यता के निमित्त वो बौड़म या उसी ही कहलाए। सुबह बाहर दालान में चक्कर लगाते हुए वो अपने साथ वाली पड़ोसी की इधर उधर मुड़कर देखने की दृष्टि को पकड़ने की तब तक लुका छुपी खेलती रहती जब तक वो उसे गुड मॉर्निंग न बोल दे। पर वो इधर देखने के प्रयास किए बगैर और गुड मॉर्निंग को बिना स्वीकारे घर के अंदर चली जाती, जैसे जया की गुड मॉर्निंग को छूते ही उसका धर्म या रंग भ्रष्ट हो जाएगा। दूसरी तरफ की पड़ोसिन मिस स्मिथ को वो समोसे खिलाती रहे, अच्छी अच्छी हिंदुस्तानी शादियों की वीडियो दिखाती रहे। तभी तक खुश है, वरना तू कौन और मैं कौन? एक तरफ फाटक कब तक खुला रह सकता है? बदहवासी में उसने दरवाजा खोला और बिना अखबार उठाए सामने वाले घर की ओर चल पड़ी जहां वैन खड़ी थी। वो अंदर से इतनी विह्वल थी कि उसे मालूम नहीं हो रहा था कि इस स्थिति में कैसा व्यवहार करे। अपना देश होता तो वो उहापोह में ना होती, झिझक का तो प्रश्न ही नहीं था। सीधे अंदर घुसकर उस स्थिति में पूरी तरह आत्मसात हो जाती, पर इस पराये देश में क्या करे? ऊपर से वो घर में रहने वाले का नाम तक नहीं जानती। एक क्षण के लिए उसने सोचा शायद ये वो व्यक्ति ही हो जिसके बारे में वो सोच रही हो, यद्यपि उस घर से आते जाते उसने एक ही व्यक्ति को आज तक देखा था, विशेषता सुबह अखबार उठाते हुए। बाहर दालान में दो तीन लोग खड़े थे। वो उनकी ओर बढ़ना चाहती थी और पूछना चाहती थी, तभी वो अपने बिल्कुल सामने वाले पड़ोसी को देखकर रुक गई और सोचा, क्यों ना उसी से कुछ पूछताछ करके अंदर जाए। जया ने सोचा कि वो उनका बिल्कुल बगल वाला पड़ोसी है, जरूर कुछ ना कुछ या शायद सब कुछ जानता होगा, और यहाँ के लोगों का हम विदेशियों के प्रति रवैया गैरों जैसा है। पर ये लोग तो इनके अपने हैं, हालांकि जया को इसका भी नाम पता नहीं था। तभी एकाएक आसमान से टपके फरिश्ते की तरह जया को उसका नाम याद आ गया। एक रात जया कहीं से लौटी थी और उसकी चाबी कार में बंद हो गई थी। कार में गैराज ओपनर था, इसलिए वो गैराज नहीं खोल सकी। घर की चाबी भी कार की चाबी वाले गुच्छे में ही थी। रात के वही 10 बज रहे थे। आसपास जंगल जैसा सन्नाटा था। उसी समय सामने वाला कहीं से लौटा। उस अजनबी पड़ोसी को देखते ही जैसे उसके जान में जान आ गई। ढीढ़ता से बिना पहचान के उसने आगे बढ़कर मदद मांग ही ली। इस सिलसिले में उनके बीच उस दिन नामों का आदान प्रदान हुआ था। रिक, उसे याद आ गया। हेलो, कहती हुई जया उसकी ओर बढ़ गई। ये क्या हुआ? वो भौचक्का होकर उसकी ओर देखने लगा, जैसे उसने कोई मूर्खतापूर्ण प्रश्न पूछ लिया हो। आपको मालूम था? नहीं नहीं, अभी अभी बस पता चला है। क्या बीमार थे? हाँ, कुछ दिनों से। आप मिले थे उनसे? नहीं, क्यों? ये उनका व्यक्तिगत मामला है। जया की सारी शिराएं सकते में आ गई। बीमार होना, दुखी होना व्यक्तिगत मामला है। किसी का दुख बांटना व्यक्तिगत मामले में हस्तक्षेप हो जाता है। आज तक वो सोचती थी कि शायद परदेसी होने के कारण ये लोग हमसे जुड़ नहीं पाते। हमारा रंग, धर्म, संस्कृति बहुत अलग है इनसे, लेकिन इनका तो आपस में भी जुड़ाव नहीं है। ना जाने क्यों जया की जिज्ञासा शांत नहीं हो पा रही थी। जया सोच रही थी कि वो तो बिल्कुल उनका नेक्स्ट डोर पड़ोसी है, इसे तो सब मालूम ही होना चाहिए। आप जानते थे कि वे बीमार है? नहीं, कभी कोई बात ही नहीं हुई। बस एक दिन उनका लड़का बाहर अपनी कार स्टार्ट कर रहा था तो कार स्टार्ट हो नहीं रही थी। मैंने उसकी सहायता की थी। उसी से पता चला कि उन्हें 2 महीने पहले ही पैनक्रियास का कैंसर डिटेक्ट हुआ है और वो भी अंतिम स्टेज पर है। क्या कोई पहले कोई चिन्ह नहीं थे? शायद वे जानबूझकर टालते रहे हों। जया मूर्खों की तरह बोलती जा रही थी, जैसे रिक उनका डॉक्टर हो या कोई घर का जिगरी। जया को वो ऐसी दृष्टि से देख रहे थे जैसे वो किसी गांव की उजड़ गवार औरत हो। आप अंदर गए? नहीं, कब जाने वाले? अभी सोचा नहीं। और रिक कुछ देखने के लाभ से दूसरी ओर मुड़ गया। जया हताश होकर अंदर लौट आई। उसे याद नहीं पड़ा कि कब उसने गैस ऑन कर दी और चाय का पानी सूख कर चुक गया था और केतली के तले की जलने की बदबू आ रही थी। उसने छटपट से गैस बंद कर दी। अब चाय की इच्छा जाती रही थी। वो कमरे में अनमनी सी चक्कर काटने लगी। आप कहाँ जा रहे हैं पिताजी? उसने अपने ससुर को गले में साफा ओढ़कर बाहर जाते देखा। दूसरी तरफ गली के आखिरी मकान में किसी का देहांत हो गया है। इस सेक्टर का पोस्ट मास्टर था वो शायद। जया ने एक हुंकार भरा। अंदर ही अंदर वो दहल गई। धर्मपाल अंकल? वो थोड़ा थोड़ा उन्हें जानती थी, पर माँ बाबूजी तो पहली बार इस घर में आए हैं। आप तो उन्हें जानते भी नहीं पिताजी। किसी आत्मा को अंतिम सत्कार देने के लिए जानना जरूरी नहीं होता बेटा। और वो चले गए। उसे याद है वो भूखे प्यासे 3-4 घंटे बाद वापस लौटे थे। वो हर दिन सोचती है कैसी है यहाँ की जिंदगी, यहाँ के ताबूत गाह की तरह खड़े हुए साफ सुथरे घर जिनमें कोई चहल पहल नहीं, एक सन्नाटे में लिपटी हुई ये इमारतें जैसे धीरे धीरे सुबकती रहती हैं बे आवाज। यहाँ चहल पहल केवल बागों बगानों नदी समुद्रों के किनारे पर देखी जा सकती, अन्यथा बंद कमरों में बंद जिंदगी, अंदर से चमचमाते निर्जीव घर, न रसोई से उठती खुशबू, न बच्चों की खिलखिलाहट, न पेड़ों पर आते बौर पर चहकती चिड़िया, जैसे सब कुछ एक कृत्रिम आडंबर में लिप्त हुआ सभ्यता का आडंबर। फ्यूनरल वैन सामने खड़ी हो और पड़ोसी को उसकी आहट तक न हो। चारों तरफ पूरी तरह सन्नाटा था, एक भी व्यक्ति नहीं था। आसपास आने जाने वाले भी फ्यूनरल वैन को देख रास्ता बदल रहे थे। कहीं किसी खिड़की से कोई चेहरा नहीं झांका, किसी आंगन में बंधा कुत्ता तक नहीं भौंका। जया का मरने वाले से कोई नाता कोई पहचान तक नहीं थी। नाता सिर्फ इतना था कि हर सुबह वो उसे सामने वाले घर से एक लंबे लंबोतर चेहरे वाले सौम्य व्यक्ति को अखबार उठाते देखती और उस लाभ में झुककर अखबार उठाते हुए कभी कभी दूर से नजरों का धुंधला सा टकराव होता और औपचारिकता से आधा उठा हुआ हाथ हेलो में हिलता। एक कल्पित सी मुस्कान शायद दोनों तरफ होती थी या शायद नहीं, याद नहीं, बस इतनी सी पहचान थी, इतना सनाता था। इस पहचान में कहीं भी अपनत्व या पड़ोसीपन नहीं था, बस एक ही योनि के प्राणी होने का आभास पूरा पूरा होता था। जंगल में जानवर भी इस रिश्ते को अपने ढंग से अवश्य निभाते होंगे, फिर दोनों ही अपने अपने ताबूतों में घुस जाते। ना जया उनका नाम जानती थी और ना वे जया का नाम जानते थे। यहाँ तो दरवाजों पर नेम प्लेट लगाने का रिवाज है ही नहीं। जया को ख्याल आ रहा था कि उसने वास्तव में कुछ दिनों से उन्हें अखबार उठाते देखा ही नहीं था, पर ऐसा कुछ भी अन्यथा उसके मन में आया नहीं था। वो उम्र के अधेड़ मोड़ पर बालों में हल्की बर्फ की भगुनाई से सफेदी लिए शांत व्यक्ति को देखती थी, गंभीर चेहरा, कभी ऐनक की कमानी आंखों से उतर कर गले में लटकती तो कभी आंखों को संभालते कानों पर चढ़ी हुई होती, लंबी लंबोदरी सी टी शर्ट और घुटनों से ऊपर उठी हुई निक्कर, यहां पर पूरा ढका नाइट सूट या गाउन पहनकर बाहर निकलना गलत किंतु शर्मनाक अर्धंगी देहों की सड़क पर प्रदर्शनी उचित। वो ऐसे विरोधाभासों को लेकर मन ही मन झीकती, इसलिए स्वयं भी वो चाहे जितनी सुबह हो कभी नाइट सूट पहनकर बाहर अखबार उठाने नहीं निकलती। मालूम नहीं आज सूरज कहां से मंडरा रहा था। जया बाहर निकली तब सूरज उनके घर की पीठ पर बैठा हुआ, शायद उत्तरायण में उत्तरो उत्तर था। जया के घर का दरवाजा पूर्व में खुलता था और सुबह उठते ही सूरज की ओर स्वतः प्रणाम में उसके हाथ उठ जाते। उसी क्षण हाँ आता कि उस समय उसके अपने देश में तो रात है, तो क्या वो रात के सूरज को प्रणाम कर रही है। इसी उहापोह में उगते सूरज से कभी उसकी दोस्ती गाढ़ी हो नहीं सकी। कभी समझ में नहीं आया कि वो उगते सूरज को देख रही है या डूबते सूरज को। आज उसे लगा शायद पिछली रात से ही सूरज उनके घर के पिछवाड़े पीठ मोड़कर बैठा है। वो अपने कमरे में बेचैनी के साथ कभी दाएं तो कभी बाएं घूमती है, बीच बीच में खिड़की से स्थिति का अनुमान भी लेती रहती है। पता नहीं क्यों उसे इंतजार है कुछ सिसकियों का जो उनकी मृत्यु को कहीं श्रृंगारित कर सकती है। कभी कभी उसने उस व्यक्ति को साय समय दफ्तर से लौटकर कार को गैराज में पार्क करने के बाद अपनी डाक खंगोलते भी देखा है, बिना इधर उधर मुंह मोड़े और फिर अपने घर के अंदर शाम के सूरज की तरह अस्त होते। पहले कभी नहीं सोचा, लेकिन आज ना जाने क्यों उनके लिए एक दयाद्र सी व्यथा उभर रही है। क्या था जो उन्हें सालता होगा? वे इतने चुप और अकेले लगते थे। क्या काम करते होंगे, किसके साथ, कैसी और किस विषय पर उनकी बातें होती होंगी? शायद जया के मन में उनके माध्यम से यहाँ के पुरुष के बारे में कोई राय बनाने की योजना रही होगी, पर कभी ज्यादा इस विषय पर उसने गौर नहीं किया। आज से पहले अब तो ऐसा कुछ भी संभव नहीं था। कुछ भी जानने से पहले पूर्ण विराम लग गया था। आज तक उसे उनके घर कोई आता जाता दिखाई नहीं दिया। जया के पढ़ने की टेबल बिल्कुल बेडरूम के खिड़की के पास थी। ये जिज्ञासु आंखें सड़क, गली और सामने वाली घरों की गतिविधियों पर गाहे बगाहे नजर डालती रहती। इस देश में पुरुष नितांत अकेला रहता रहे, इस देश की सुनी सुनाई ऋचाओं से कुछ अलग लगता था। उनके बारे में उठे हुए सवालों के जवाब दिए बगैर वे चले गए थे। वो फिर खिड़की के पास सट गई और एक बार बेचैन सी होकर बाहर की ओर लपकती है। लाश को वैन में रख दिया गया है। वो एक बार उस चेहरे को देखकर आश्वस्त होना चाहती थी कि क्या ये वही चेहरा है, पर अब ये कदापि संभव ना हो सकेगा। वो बाहर निकल गई थी किसी को दो शब्द कहने के लिए आतुर हो उठी, पर कुछ ना लगते हुए भी एक मानवीय आर्द्रता छोड़ गए थे वे। उसे अपने आप में एक अजीब सी घुटन और बेचैनी महसूस हो रही थी, जैसे कहीं कुछ अधूरा है। वो इस बात से समझौता नहीं कर पा रही थी कि कोई दुनिया छोड़कर चला जाए और कोई उसके लिए दो आंसू तक ना बहाए। उसकी अपनी आंखों में नमी उतर आई थी। जया की शिराएं तन गई थी, मस्तिष्क भन्ना रहा था, उसकी सोच को कोई ठौर नहीं मिल रहा था। वो उनका नेक्स्ट डोर पड़ोसी रिक, जिसका ड्राइव भी एक ही था, जिस पर दोनों के पैर पड़ते थे, एक तरफ से वे एक दूसरे को रोज छूते थे, दोनों एक दूसरे के पावों पर चलते थे, एक बाहर निकलता था या बाहर से आता था तो घर के अंदर दक्षिण दिशा में मुड़ता और दूसरी उसी धुरी से उत्तर की ओर अपने घर में घुसता था। कहने को दोनों एक ही बिंदु से अपनी अपनी दिशा बांट रहे थे, पर दोनों में कोई सरोकार नहीं था। वो भी मुंह बाए अपने ही दालान में खड़ा टुक टुक तमाशा देख रहा था। बाहर दालान में तीन लोग खड़े थे, उनके कॉफी के मग अभी भी दालान की बनेर पर अधपिए पड़े सारा करतब देख रहे थे। एक पुत्रनुमा लड़का कॉफी के मग को बनेर पर रखे दूसरे हाथ से सिगरेट के लंबे कश खींच रहा था और आकाश की ओर मुंह उठाकर धुएं की लकीरें बना रहा था। उसे कई बार लगता रहा यहाँ के लोग साधु संतों जैसे, उन्हें हमारी तरह दुख दर्द शायद व्याप्ता नहीं है। ये लोग दुख में हमारी तरह चीखते चिल्लाते नहीं, मौत पर आंसू तक किसी विशेष हिसाब से निकलते ही नहीं। हमारे यहाँ भावनाओं का, स्मृतियों का, रिश्तों का, रिवाजों का जैसे अंधड़ फूट पड़ता है। अपनी पूरी उद्दाम छलांगों और छपाकों के साथ दहाड़ते समुद्र की बेसुध पागल ज्वार भाटा सी बेचैन लहरों से सरीखा, जिससे गली मोहल्ला घर मकान व्यक्ति अपने पराए एक बार सभी डूब जाते हैं। कई कई दिनों बल्कि सालों तक कुछ रिवाजों नीतियों का आडंबर समेटे निर्वाह चलता रहता है। हमारी सदियों से आत्मसात की हुई दार्शनिकता आध्यात्मिकता नैनम छिंदती शास्त्रानी नैनम दहति पावक, धरी की धरी रह जाती। हम उम्र भर उस जाने वाले को जाने नहीं देते, कहीं समेट समेट कर रखते हैं। श्राद न किया, पुत्र ने कंधा न दिया, अग्नि न दी तो मुक्ति न हुई, फिर भी हमारी मुक्ति नहीं होती। पर यहाँ जीवन को केवल जीवन समझकर जिया जाता, वो भी पहले अपने लिए, केवल अपने लिए, ठीक स्वस्थ भरपूर सुविधाओं से भरा पूरा होना जीने की अनिवार्य शर्त है। उनके बाहर सब मिथ्या है। ये निर्णय कठिन है कि कौन सी दार्शनिकता ढोकर चलना जीवन के प्रति सच्चाई है। ओह, फिर से सोच में डूब गई। गेट पर ठिटकी खड़ी थी, कपड़े बदलूं या यही पहने रहूं, क्योंकि अभी भी कहीं इच्छा थी वैन के अंदर झांक कर देखने की और संबंधियों से गले मिलने की, किंतु ये तो ड्राई क्लीन करवाने पड़ेंगे। दूसरे ही क्षण जया ने अपने को धिक्कारा, वो भी पहाड़े पड़ने लगे। धड़ाधड़ गेट से निकलकर सीधे वैन के पास पहुंच गई। शरीर तो अंदर रखा जा चुका, वो लंबा छरहरा लंबोत्तर मुंह वाला व्यक्ति नहीं, अब केवल शरीर था जिसे अंतिम बार देखने का अवसर भी मिट चुका था। वे तीनों लोग अभी भी दालान में खड़े आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन उनकी मुद्राएं भी मात्र पड़ोसियों सी दर्शक वाली ही थी। वो झिझक रही थी, फिर भी बार बार उल्लुओं की तरह उनकी ओर मुंह उठाकर देख लेती थी कि शायद उनमें से किसी के साथ आंखों का सादृश्य हो जाए तो वो अपनी संवेदनाओं को संवाहित कर सके, जिससे वो अपने पिछले 2 घंटे से अंदर ही अंदर कुलबुला रही थी, किसी से कम पूछ सके उस जाने वाले का नाम जो आज बिन बताए, बिन सुबह की अखबार उठाए और हेलो किए चला गया है। उसकी आंखें बेबस नम हो आई, पर किसी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, नजरें तक नहीं उठाई। बात करना तो दूर की बात थी। अभी आप सुन रहे थे सुदर्शन प्रियदर्शनी की लिखी कहानी अखबार वाला। गाथा में इस कहानी को आपके लिए प्रस्तुत किया था निधि मिश्रा ने।